संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार बुलेटिन। मैं हूं महबूब खान। 10 जनवरी 2020 के इस अंक में शामिल है। यूएन चार्टर है विश्व को युद्ध से बचाने का दस्तावेज, कहा यूएन महासचिव ने। ईरान अमेरिकी सैन्य तनाव घटाने के प्रयासों में सक्रिय हुए महासचिव। ईरान में एक यात्री विमान हादसे में मृतकों के प्रति गहरी संवेदना। कुछ देशों में अब भी पोलियो के फैलने पर भारी चिंता। और चोरी के बाद बरामद हुई बेशकीमती कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी मुख्यालय में। हम आपको याद दिलाते चलें कि व्यापक दायरे वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना न भूलें। पता है news.un.org/hi। साथ ही अपने मोबाइल फोन पर यूएन न्यूज रीडर ऐप भी डाउनलोड करेंगे तो बाईं ओर विभिन्न भाषाओं की सूची में नीचे हिंदी भी नजर आएगी। आप न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसके जरिए प्रमुख समाचार आपको आसानी से हासिल होते रहेंगे। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने भू राजनीतिक तनावों के बढ़ने और देशों के बीच दरकते भरोसे के इस दौर में सदस्य देशों को यूएन चार्टर के मूल्यों की ओर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने यूएन चार्टर को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक निर्धारक दस्तावेज करार दिया, जिसके मूल में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा है। संयुक्त राष्ट्र की संस्थापक संधि के पारित होने को 75 साल पूरे होने वाले हैं और इसी सिलसिले में यूएन प्रमुख ने गुरुवार को सुरक्षा परिषद में आयोजित एक बैठक को संबोधित किया।
At this time when global fault lines risk exploding, we must return to fundamental principles.
यूएन महासचिव कह रहे थे कि एक ऐसे समय जब दुनिया में पहले से मौजूद दरारों के फटने का जोखिम बढ़ रहा है, हमें बुनियादी सिद्धांतों पर लौटना होगा। हमें उस फ्रेमवर्क पर लौटना होगा जिसने हमें एक साथ रखा है। हमें अपने घर यानी यूएन चार्टर पर वापस लौटना होगा। यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेश के शब्द। यूएन चार्टर में सभी लोगों के लिए समान अधिकारों, राष्ट्रीय स्वनिर्णय के अधिकार का सम्मान, विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे की आवश्यकता की फिर से पुष्टि की गई है और बल प्रयोग के लिए स्पष्ट नियमावली का उल्लेख है। महासचिव ने कहा कि ये मूल्य और उद्देश्य आज भी कायम हैं। ये सिद्धांत कोई रियायत या एहसान नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नींव है। ये शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून का मर्म है। इन्होंने बहुत से लोगों की जिंदगियां बचाई हैं, आर्थिक व सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाया है और अहम बात यह है कि एक और विश्व युद्ध में धकेले जाने से रोका है। महासचिव का कहना था कि लेकिन जब भी इन सिद्धांतों की अवज्ञा की गई है, उन्हें ताक पर रखा गया है या सही भावना के साथ लागू नहीं किया गया, तो उसका नतीजा विनाशकारी रहा है। हिंसक संघर्ष, अराजकता, मौतें, मोहभंग और अविश्वास। हमारी साझा चुनौती यूएन चार्टर के मूल्यों को बरकरार रखना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके वादे को पूर्ण करना है। चुनिंदा वैश्विक हस्तियों के स्वतंत्र समूह द एल्डर्स की प्रमुख और आयरलैंड की पूर्व राष्ट्रपति मैरी रॉबिन्सन ने इस अवसर पर कहा कि दुनिया के अस्तित्व पर परमाणु प्रसार और जलवायु संकट जैसे खतरे मंडरा रहे हैं, लेकिन इन चुनौतियों के जवाब में सामूहिक कार्रवाई दरअसल राष्ट्रवाद और लोक लुभावनवाद के कारण कमजोर पड़ रही है। ये समूह वर्ष 2007 से शांति, न्याय और मानवाधिकारों के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूएन चार्टर के मूल में यही सहयोगपूर्ण रवैया है और मध्य पूर्व के बढ़ते तनाव के बीच हालात को बेहतर बनाने का प्रभावी तरीका भी। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि ईरान द्वारा इराक में अमेरिकी सेना के ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइल हमले में निशाना बनाए जाने के बाद युद्ध को टालने और तनाव घटाने के प्रयासों में सक्रियता से शामिल होंगे। उन्होंने शांति की अपील दोहराते हुए कहा कि सभी पक्षों को संयम बरतने के साथ आपसी संवाद पुनर्स्थापित करना चाहिए। महासचिव अंतोनियो गुटेरेश के प्रवक्ता स्टेफान दुजारिक ने अंतोनियो गुटेरेश की ओर से एक बयान जारी कर शांति की अपील को पुरजोर ढंग से दोहराया। यूएन प्रमुख ने इससे पहले सोमवार को अपने बयान में सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की थी। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
कुछ ही दिन पहले इराक की राजधानी बगदाद में एयरपोर्ट के नजदीक अमरीकी ड्रोन हमले में ईरान के वरिष्ठ सैन्य जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान ने बदला लेने की कार्रवाई के तहत عراق میں امریکی اور گٹھ بندھن سینا کے سینیہ ٹھکانوں کو منگلوار رات بیلسٹک میسائل داغ کر نشانہ بنایا۔ اس سے کھاڑی کھیتر میں تناؤ چرم پر پہنچ گیا۔ سنیکت راشٹر مہا سچیو انتونیو گوٹریش نے اپنے بیان میں تناؤ کم کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ وہ حالات کو نینترن میں لانے کے لیے سکریتا سے پریاس کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سوموار کو انہوں نے نیو یارک میں یو این مکھیالے میں پترکاروں کے سامنے اپنے چار سوتری ایجنڈے کو سامنے رکھا تھا۔
I've been following the recent rise in global tensions with great concern. I'm in constant contact with leading officials around the world.
میں ویشوک تناؤ میں ہوئی بڑھوتری پر چنتت ہوں اور گھٹنا کرم پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ میں دنیا بھر میں پرمکھ ادھیکاریوں کے سمپرک میں ہوں اور میرا سندیش سرل اور سپشٹ ہے۔ تناؤ بڑھنے سے روکیے، ادھکتم سنیم برتیے، سمواد پھر استھاپت کیجیے اور انتراشٹریہ سہیوگ پنرجیوت کیجیے۔ مہا سچیو گٹریش کے شبد۔ عراق میں سنیکت راشٹر مشن کی اور سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ساجھا فرض بنتا ہے کہ کھاڑی کھیتر میں یدھ ٹالنے کا ہر سمبھو پریاس کیا جائے، جس کا خطرہ دنیا مول نہیں لے سکتی۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یدھ سے مانوتا کے لیے بھیاوہ نتیجے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح عام لوگوں کو ہی اس کی سب سے بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یو این مشن نے اپنے ٹویٹ سندیش میں سبھی پکشوں سے تتکال سنیم برتنے اور سمواد کو پھر استھاپت کرنے کی اپیل کی ہے۔
سنیکت راشٹر مہا سچیو انتونیو گوٹیریش نے ایران میں یوکرین ایئر لائنز کے ایک ویمان کے درگھٹنا گرست ہونے پر گہرا دکھ پرکٹ کیا ہے۔ بوئنگ 737-800 ویمان راجدھانی تہران کے امام خمینی انتراشٹریہ ایئرپورٹ سے کیو کے لیے اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد درگھٹنا گرست ہو گیا، جس میں سوار سبھی 176 یاتریوں و چالک دل کے سدسیوں کی موت ہو گئی۔ یو این پرمکھ کی اور سے جاری بیان میں اس درگھٹنا کا شکار ہوئے لوگوں کے پریجنوں اور سرکاروں کے پرتی گہری سنویدنا ویکت کی گئی ہے۔ منگلوار رات ایران نے عراق میں امریکی سرکشا بلوں کے ٹھکانوں پر بیلسٹک میسائل سے حملہ کیا، جس کے کچھ ہی گھنٹوں کے بھیتر یہ ویمان حادثہ ہو گیا۔ ایران کے ورشٹھ سینیہ جنرل قاسم سلیمانی کے امریکی ڈرون حملے میں مارے جانے کے بعد ایران نے کہا تھا کہ یہ کارروائی اس نے بدلہ لینے کے مقصد سے کی تھی۔ شروعاتی رپورٹوں میں ایران نے ویمان کے درگھٹنا گرست ہونے کا کارن انجن کا خراب ہونا بتایا گیا۔ یوکرین کے راشٹرپتی ولودیمیر زیلنسکی نے سچیت کیا کہ درگھٹنا پر بنا صحیح جانکاری کے قیاس لگانے سے بچا جانا چاہیے اور حادثے کی آپرادھک جانچ کے آدیش دے دیے گئے ہیں۔ یوکرین کے ودیش منتری وادیم پرائستائیکو نے کہا کہ ویمان میں وبھن دیشوں سے کل 167 یاتری اور چالک دل کے 9 سدسیہ سوار تھے۔ ان میں ایران کے 82، کینیڈا کے 63، یوکرین کے 11، سویڈن کے 10، افغانستان کے 4، جرمنی اور برٹن کے 3 ناگرک شامل تھے۔ سوئٹزرلینڈ کے جینیوا شہر میں سواستھیہ وشیشجوں کی ایک بیٹھک میں انتراشٹریہ استر پر پولیو سنکرمن کا پھیلنا جاری رہنے پر گہری چنتا جتائی گئی ہے۔ پاکستان اور افغانستان سہت کئی دیشوں میں پولیو وائرس کے معاملے سامنے آنے پر سارجنک سواستھیہ سے جڑی چنتا برقرار ہے۔ وشو سواستھیہ سنگھن نے اس مدعے پر حال ہی میں آپات استھتی کی ایک بیٹھک بلائی تھی، جس کے بعد منگلوار کو ایک بیان جاری کیا گیا۔ یو این سواستھیہ ایجنسی کی ذمہ داری سارجنک سواستھیہ سے جڑی آپات پرستھتیوں پر تکنیکی پرامرش اپلبدھ کرانا ہے۔ زیادہ جانکاری کے ساتھ شیوانی کالا۔
विश्व स्वास्थ्य संगठन के बयान में कहा गया है, समिति ने सहमति जताई है कि पोलियो वायरस के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने का जोखिम अब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति है। आपात स्थिति की बैठक दिसंबर 2019 में हुई थी। समिति ने वाइल्ड पोलियो वायरस 1 के मामलों में तेज बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त की है। पोलियो के 3 प्रकारों में इसका अभी उन्मूलन नहीं हो पाया है। 11 दिसंबर 2019 तक वैश्विक स्तर पर वाइल्ड पोलियो वायरस 1 के 113 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2018 में इसी अवधि में 28 केस सामने आए थे। सदस्यों ने बताया कि हाल के समय में हुई प्रगति अब उलट गई है, क्योंकि 2014 में पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न का दर्जा दिए जाने के बाद से WPV1 का फैलना अपने उच्चतम स्तर पर है। विशेष रूप से पाकिस्तान में संक्रमण व्यापक नजर आ रहा है और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत इससे सबसे अधिक प्रभावित है। पाकिस्तान में कुछ समुदाय वैक्सीन लेने में अनिच्छुक हैं। साथ ही देश में राष्ट्रीय पोलियो कार्यक्रम का राजनीतिकरण एक समस्या के रूप में उभरा है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान में भी हालात चुनौतीपूर्ण हैं और दक्षिणी प्रांतों में जरूरतमंदों तक वैक्सीन नहीं पहुंच रही है। ऐसे में मामलों के बढ़ने की आशंका भी देखी जा रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके फैलाव का खतरा भी बढ़ जाएगा। पोलियो उन्मूलन में प्रगति के लिए सभी समुदायों तक वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित करने को अहम बताया गया है। समिति ने माना है कि संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील घुमंतू समुदायों तक टीकाकरण कार्यक्रम पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास व सीमा चौकियों पर सभी उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। नाइजीरिया में पिछले 3 वर्षों में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 का कोई मामला सामने नहीं आया और माना जा रहा है कि अफ्रीकी क्षेत्र को वर्ष 2020 में वाइल्ड पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया जा सकता है। वैक्सीन दिए जाने के कारण होने वाले पोलियो के मामले 4 क्षेत्रों में सामने आए हैं, अफ्रीका, पूर्वी भूमध्य सागर, दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र। समिति की पिछली बैठक से अब तक 7 नए देशों चाड, आइवरी कोस्ट, मलेशिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, टोगो और जाम्बिया में ये मामले दर्ज किए गए हैं। समिति के मुताबिक इन संक्रमणों का फैलना अभूतपूर्व और चिंताजनक है। समिति ने कहा है कि वाइल्ड पोलियो वायरस 1 या वैक्सीन से होने वाले पोलियो से प्रभावित देशों को आधिकारिक रूप से ये घोषणा करनी चाहिए कि इस संक्रमण का फैलाव रोकना उनके लिए राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी इमरजेंसी है। देश में निवास कर रहे लोगों और यात्रियों को प्रभावित इलाकों में इस बीमारी से सुरक्षित बनाने पर जोर देने के अलावा वैक्सीन कवरेज बढ़ाने और सीमा पार आवाजाही के दौरान टीकाकरण की निगरानी करना अहम बताया गया है।
न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक अनोखी कला प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें दुनिया भर से लाई गई ऐसी कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं जो इतिहास के एक हिस्से की झलक पेश करती हैं। महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने बुधवार को शुरू हुई रिकवर्ड आर्ट, द आर्ट ऑफ सेविंग आर्ट नामक इस कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़।
आमतौर पर कला प्रदर्शनियों में कुछ खास कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की जाती हैं या फिर किसी कला आंदोलन की झलकियां पेश होती हैं, लेकिन इस कला प्रदर्शनी की खास बात यह है कि यहां प्रदर्शित हर कलाकृति की चोरी हो गई थी और हर कलाकृति को बरामद किया गया। इसमें इटली की पुलिस की जांच पड़ताल महारत और उनके पक्के इरादों के परिणाम नजर आते हैं। इस मुहिम में इटली पुलिस को अक्सर अनेक देशों के साथ मिलकर काम करना पड़ा। इस तरह ये कला प्रदर्शनी बेशकीमती कलाकृतियों की झलक पेश करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ताकत की भी एक तस्वीर पेश करती है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने साथ ही अफसोस जताया कि हाल के वर्षों में किस तरह दुनिया भर में कितनी बड़ी संख्या में सांस्कृतिक धरोहर गुम हो गई हैं। ये धरोहर इराक, सीरिया से लेकर यमन, माली और अफगानिस्तान तक अनेक देशों में गुम हुई हैं। इस अवसर पर बताया गया कि हम सभी ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो हमारी साझा धरोहर को संरक्षित रखने के प्रयासों में बाधा खड़ी करते हैं। इनमें जलवायु संकट से लेकर अशांति, सशस्त्र संघर्ष से लेकर आतंकवाद, सभी तरह की चुनौतियां शामिल हैं। महासचिव गुटेरेश ने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की मुहिम में कामयाबी हासिल करने के लिए इटली की सराहना करते हैं। इनमें सांस्कृतिक संपदा की गैरकानूनी तस्करी के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को मजबूती देना भी शामिल है।
तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। महबूब खान को इजाजत दीजिए। अपना और अपने आसपास सभी का खूब ख्याल रखिएगा। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi।